ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रज भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक जब चल रहा था तो कुछ प्रॉब्लम आने के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो लास्ट श्लोक में कुछ तात्पर्य डिस्कस करना बाकी था। एक तो हमें डिस्कस करना था, ये 11वें अध्याय का 55 श्लोक है। मत परम शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानते हैं। ऐसे व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग के जैसे उच्च लोकों में अथवा ब्रह्मांड के सबसे ऊँचे लोकों में जाने के इच्छुक नहीं रहते हैं। उनकी आसक्ति आध्यात्मिक संसार में जाने की होती है। तो जो भगवान के लिए समर्पण करते हैं वो उच्च लोकों में जाना नहीं चाहते हैं, आध्यात्मिक संसार में जाना चाहते हैं, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं। उन्हें उस लोक का पूरा ज्ञान होता है इसलिए वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहते। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है कि वह भक्ति में पूर्णतया रत रहते हैं। विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 गुणों में लगे रहते हैं। इसके अलावा एक और शब्द था इसमें, संगवर्जिता। संगवर्जिता महत्वपूर्ण शब्द है। संग का मतलब आसक्ति, वर्जिता मतलब त्यागना। संग का एक और मतलब होता है कि किस प्रकार के लोगों के साथ हम एसोसिएशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए जो कृष्ण के विरोधी हैं या नास्तिक हैं। और कभी अगर दुर्भाग्य से हम उनके साथ रहते हैं तो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका एसोसिएशन हमारे ऊपर बैडली अफेक्ट नहीं करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसे लोगों का संग लेंगे जो कि जिनका संग भक्ति के लिए अच्छा नहीं है तो धीरे धीरे हमारा वो भक्ति का भक्ति लता बीज है वो धीरे धीरे सूखता जाता है। तो ऐसे लोगों का संग नहीं लेना चाहिए जो सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं या मनोधर्म के प्रति आसक्त हैं। ऐसी संगति अवांछित संगति कहलाती है। इस संगति को छोड़ना चाहिए और ऐसी संगति करना चाहिए जिसमें हम भगवान के लिए अनुकूल भाव से भगवान की सेवा कर सकें। जैसे कंस जो थे वो कंस के शत्रु थे, मारने की योजनाएं बनाते रहते थे। तो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को मैत्री नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और एक और भक्ति का इसमें सेंटेंस आया है, निर्वैरः। भगवान के जो भक्त हैं वो किसी से वैर नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के भक्तों का नाम अजात शत्रु भी होता है। उनको कोई व्यक्ति शत्रु मान सकता है परंतु वो किसी को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वो सोचते हैं कि शत्रुता तो शरीर के साथ होती है, आत्मा के साथ कैसी शत्रुता होगी। और वो सबके शरीर में जब परमात्मा को देखते हैं तो वो किसी की शत्रुता नहीं रखते। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के दुश्मन बन के उसको ख़त्म करने, उसको नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। भगवत भक्त जो हैं वो भगवान के प्रचार में खुद सहन कर लेते हैं परंतु दूसरे लोगों को परेशानी नहीं प्रदान करते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट का उदाहरण इसमें दिया गया है प्रभुपाद जी ने। अभक्तों के लिए, अभक्तों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति के प्रसार में उत्सर्ग कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज के पिता उनको परेशान करते थे, प्रहलाद महाराज के पिता जो थे वो उनको मारना चाहते थे, केवल इसीलिए क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। इसी तरह से हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया था, केवल इसीलिए क्योंकि वो भगवान के नाम का जप करते थे। तो इस तरह से भगवत भक्त किसी से बैर नहीं करते हैं और जो भी होता है उसको सहन करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इस अंतिम श्लोक में ये बताया गया था कि किस प्रकार भगवान का पूर्ण रूप जो है वो श्याम सुंदर रूप है, उनका द्विभुज रूप है, ये बता के उस रूप की भक्ति करना और किसी से बैर नहीं लेना और भगवान के लिए कर्म करना और बुरे संग से बच के रहना, कोई इस तरह से करता है तो भगवान को प्राप्त करता है। ये हमारा कल छूट गया था 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक, आज हम 12वां अध्याय देखेंगे। 12वां अध्याय भक्ति योग सेक्शन का लास्ट चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अर्जुन ने जब भगवान के रूप को देखा, भगवान के ऐश्वर्य को देखा, ऐश्वर्य को देखने के बाद अर्जुन की भक्ति बहुत बढ़ गई और फिर अर्जुन भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन अपनी पोजिशन को भी और कॉन्फिडेंटली जानना चाहते हैं कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, परंतु कई लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की भी पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं उनकी भी पूजा करते हैं, तो मैं उनकी तुलना में कैसे अच्छा हूँ। या ऐसे लोग जो भगवान के पर्सनल रूप की पूजा करते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म की जो पूजा करते हैं उनसे वो कैसे अच्छे होते हैं, ये अर्जुन का एक प्रश्न था। तो अर्जुन 12वें अध्याय का प्रारंभ इसी प्रश्न से करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषां ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। इसका मतलब है कि एवं सतत युक्ता ये, ऐसे भक्त जो हमेशा आपकी सतत हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, या जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा, कौन ज़्यादा पूर्ण माना जाता है, जो आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं या जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाता है। तो ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले और साकार की पूजा करने वालों में कौन अच्छा होता है। हमने पहले भी देखा भगवद गीता के पिछले सेक्स चैप्टर्स में भी कि परम सत्य की अनुभूति तीन विधियों में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन विधियों में परम सत्य की अनुभूति होती है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो भक्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सगुणवादी कहलाते हैं और जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि जीव जो है वो इंद्रियों की, जीव की स्वयं की इंद्रियां होती हैं, जैसे आत्मा की इंद्रियां होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा की इंद्रियां नहीं होती, परंतु भगवद गीता ये बताता है कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं। तो जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि निराकारवादी और भक्त दोनों में कौन अच्छा होता है, तो ये प्रश्न हम सभी के लिए भी है। हम सभी के मन में कुछ ना कुछ तो डाउट होता है कि पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार हैं, इस्कॉन में बताते हैं अब इस तरह से कि भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमारे मन में भी डाउट होता है। इसलिए अर्जुन हमारे मन के डाउट को दूर करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए ये डाउट दूर हो जाएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, और भगवान ने इसमें बहुत क्लियर उत्तर दिया है, भगवान ने कुछ इस तरह का नहीं बताया है, एकदम क्लियर उत्तर दिया है कि क्या सच्चाई है। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मय्यावेश मनो ये माम ये नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमो मतः। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। दैट मीन्स भगवान ने डायरेक्ट अपना ओपिनियन बताया कि जो भी लोग साकार रूप में मेरी पूजा करते हैं और श्रद्धया परयोपेतास, श्रद्धा के साथ मेरी पूजन करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, ये भगवान क्लियरली बता रहे हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, पुस्तक पढ़ता है, प्रसाद बनाता है, कृष्ण के लिए कुछ खरीद के लाता है, कुछ मंदिर में झाड़ू लगाता है, बर्तन धोता है, जो कुछ भी वो करता है भगवान कृष्ण से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त किसी भी कार्य में क्षण नहीं गंवाता। ऐसे भक्त को, ऐसे कार्य को पूर्ण समाधि कहा जाता है। इसके बाद भगवान उन लोगों के लिए भी बता रहे हैं जो कि निराकार की पूजन करते हैं, तो उनके बारे में भगवान बता रहे हैं जो अनिर्देश्य अव्यक्त की पूजा करते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और सभी के प्रति समभाव रख के, सर्वत्र गम अचिंत्यम च, सभी के प्रति समभाव रख के उनकी अकल्पनीय व्यक्ति की पूजा करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते हिते रता, वो भी मेरे पास आते हैं परंतु लंबे समय बाद आते हैं, एट लास्ट वो भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि जो निराकार की पूजा करते हैं वो भी ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, और बहुत बहुत जन्मों के बाद जब वो सफल होते हैं तो भगवान के चरणों में आसक्त हो जाते हैं। तो समस्त लोगों के कल्याण में लग्न रहकर वो व्यक्ति अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु अभी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पुस्तकें हों तो देख सकते हैं, पांचवा श्लोक। इसमें भगवान ने क्लियर आंसर दिया है, भगवान अपने दूसरे श्लोक में बताया कि जो मेरी पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, तीसरे चौथे में उन्होंने बताया कि जो निर्विशेष निराकार की पूजा करते हैं वो भी बहुत समय बाद मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म जो है वो मेरी एनर्जी है। पर पांचवें श्लोक में वो बता रहे हैं कि कितना कठिन है निराकार ब्रह्म की पूजा कर पाना। भगवान बोलते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्लेश का मतलब दुख और कठिनाई कष्ट, तो क्लेश अधिक तरस्तेषाम, ऐसे लोग जो अव्यक्त मतलब निराकार में अपनी चेतना को लगाते हैं उनको बहुत कष्ट होता है, उनको प्रगति कर पाना बहुत कष्ट होता है। तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम, जो निराकार ब्रह्म में अपनी चेतना को लगाने का प्रयास करते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कठिन होता है। और अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, जिन भी लोगों की देह है, जिनका शरीर है, शरीर किसका है, हम सभी का शरीर है, तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी लोग इस संसार में हैं उनमें जो लोग निराकार की पूजा करते हैं उनके लिए प्रोग्रेस करना बहुत कठिन होता है, बहुत समय उनको लगता है। तो ये क्लियर स्टेटमेंट है, अगर आप कभी किसी निराकारवादी से मिलते हैं उसको आंख मूंद के बता सकते हैं भगवद गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान क्लियरली क्लेम कर रहे हैं कि अव्यक्त की जो पूजा करते हैं उनको बहुत क्लेश होता है, और भक्ति करना बहुत आसान होता है अव्यक्त की पूजा के द्वारा। सामान्यतः सेवा करना बहुत आसान होता है, परंतु वो जब निराकार की पूजा करते हैं तो किसकी सेवा करेंगे, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं, तो संसार की वस्तुओं को भी कृष्ण को भोग नहीं लगा पाते हैं, तो वो खा भी नहीं पाते अच्छे से, कुछ उनको प्रेम का भी रस नहीं मिलता है, केवल सूखा सूखा कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, तो बहुत कठिन हो जाता है उनको सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण बहुत आसान है और स्वाभाविक भी है, इसलिए भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है और उसकी पूजा करता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, विग्रह किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है। सड़क के किनारे बहुत सारी लेटर बॉक्स होते हैं, अगर लेटर बॉक्स में हम लेटर डाल दें तो वो लेटर लेटर जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाता है। क्या कारण है? क्योंकि लेटर बॉक्स जो है वो वास्तविकता में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, वहाँ पे लाल कलर का जो लेटर बॉक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो अप्रूव होता है, इसीलिए चूंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है इसलिए हमारा लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। परंतु अगर हम किसी भी डिब्बे में लेटर डाल दें तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है। तो इसी तरह से भगवान हालांकि सब जगह हैं परंतु कोई पत्थर को जब हम विग्रह का रूप देते हैं तो उसकी जो उसमें भगवान को जब हम आह्वान करते हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त आके भगवान को आह्वान करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, तो भगवान उस विग्रह में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो मंदिर की पूजा, मंदिर में विग्रह की पूजा सगुण पूजा है, और हम देखते हैं मंदिर बहुत आसानी से हमारा माइंड भगवान में कंसंट्रेट हो सकता है, निराकार में मन लगाना बहुत कठिन होता है, जबकि भगवान का विग्रह सामने है तो उनकी सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए माला बनाना, उनके लिए कीर्तन करना, उनसे प्रार्थना करना कितना आसान हो जाता है। तो ये विग्रह जो है या संसार, भगवान ने हमारी कृपा के लिए विग्रह के रूप में आते हैं, और ये एक प्रामाणिक स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ भी बोलते हैं। आजकल लोग विग्रह के बारे में कुछ भी बोलते हैं परंतु उनको नहीं पता है कि वैदिक शास्त्र में विग्रह की पूजा कितनी महत्वपूर्ण बताई गई है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, चाहे मध्वाचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, श्रीधर स्वामी हों, चैतन्य महाप्रभु हों, सभी ने विग्रह की स्थापना की, और कितने महान महान विग्रह हैं, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, ये सभी बहुत बड़े बड़े विग्रह हैं, बालाजी। तो विग्रह की पूजा वास्तविकता में वैज्ञानिक है, जो कि शास्त्रों में से निकल के आती है, और विग्रह होने से भगवान के पास जाने में, उनको अप्रोच करने में किसी को कठिनाई नहीं होती है। तो इस तरह से फिर छठवें सातवें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो उनकी भक्ति करते हैं ये उनको भगवान कैसे खुद अपने साथ लेके जाते हैं। ये अध्याय एक्चुअली यद्यपि छोटा है परंतु बहुत डीप अध्याय है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। छठवें और सातवें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत परा, ऐसे लोग जो अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य नैव मतलब अनन्य रूप से हमेशा मेरी उपासना करते हैं, मुझे ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ। कल दसवें अध्याय में हमने देखा था ये कि भगवान बताते थे कि जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, और यहाँ पे भगवान और आगे की बात बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो अनन्य योग से मुझे ध्यान करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, ऐसे लोगों को मैं इस संसार से पार लेके जाता हूँ, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु का जो संसार है उससे मैं उनको डिलीवर कर देता हूँ, ऐसे लोगों को मैं डिलीवर कर देता हूँ, और भवामी न चिरात पार्थ, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी हमें अपने साथ अपने धाम पे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सात श्लोकों में हमने मेनली ये देखा कि भगवत भक्ति जो है वो भगवान की निराकार पूजा से बहुत ऊपर होती है, निराकार पूजा बहुत कठिन है, भगवत भक्ति बहुत आसान है। इसके बाद अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला सेक्शन ये डिस्क्राइब करता है कि भक्ति करते हुए किस किस स्तर पर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं और भगवान का नाम हमेशा जप कर सकते हैं, कीर्तन हमेशा कर सकते हैं, उनके लिए नेचुरल होता है भगवान के आश्रय लेना। और कुछ लोग जो हैं जो उस तरह से श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते हैं वो भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं, कुछ लोग डोनेशन देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से सभी लोगों को मेरी सेवा में एंगेज किया जा सकता है। तो ये पांच श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, प्रचार के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी, क्योंकि आठवें श्लोक में भगवान सबसे ऊंची अवस्था बता रहे हैं, मयैव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया, हे अर्जुन तुम मयि एव मन आधस्त्व, अपने मन को मुझ में लगाओ, और मयि बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि को भी मुझे समझने में लगाओ और मेरी सेवा करने में लगाओ, निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया, अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझे समझने में लगाओगे, मेरी सेवा करने में लगाओगे, मुझे प्रेम करने में लगाओगे, तो तुम निस्संदेह मेरे साथ हमेशा निवास करोगे। दैट मीन्स भगवान का एसोसिएशन अगर हमें चाहिए है तो भगवान का श्रवण कीर्तन अगर हम हमेशा करते रहेंगे तो भगवान का एसोसिएशन में रहेंगे। जैसे भगवान का नाम जप करना, श्रीमद् भगवद गीता भागवत को पढ़ना, लेक्चर्स को सुनना, सेवा करना, अगर इस तरह से हम भगवान में अपनी मन और बुद्धि को लगाएंगे तो हमेशा भगवान का संग हमें प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि भगवान अपने इन नाम रूप गुण लीला इन सब वस्तुओं से अभिन्न है, दोनों सभी वस्तुएं भगवान के समान हैं, तो अगर हम इनमें से किसी में भी लगते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो क्या करना चाहिए, अथ चित्तम समाधा तुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, अर्जुन अगर तुम अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, अगर अपने चित्त को अविचल रूप से मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, कुछ लोग हैं जो भगवान का नाम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत भक्ति कर सकते हैं, पर हो सकता है कुछ लोग नहीं कर पाए हों, उस स्तर पर नहीं हों, तो भगवान उसके लिए दूसरा स्टेप बता रहे हैं कि जो इस तरह से नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। तो पहला श्लोक जो था वो शुद्ध भक्तों के लिए था, अभी ये जो दूसरा श्लोक है ये साधना भक्तों के लिए है। हो सकता है हमारे नाम में रस, हमें नाम जप करने में टेस्ट नहीं हो, श्रवण करने में कोई टेस्ट नहीं हो, तो भगवान हमारे लिए बताते हैं कि अभ्यास करो, भक्ति योग के जो नियम है, सुबह उठना, मंगल आरती करना, नाम जप करना, और गुरु पूजा करना, भागवतम क्लास करना, सेवा करना, शाम को आरती करना, भगवद गीता क्लास करना और गीता पढ़ना। तो ये सब अगर हम शुद्ध भक्तों के जैसा नहीं कर पा रहे हैं, मान लो हमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है इन सबको करने में, पर तब भी कम से कम नियम के कारण कर सकते हैं, भक्ति योग की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, इंग्लिश में उसको बोला जाता है, अगर स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे हो तो रिचुअली करो, कम से कम करना अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा और फिर एक अवस्था आएगी जब हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप भगवान बता रहे हैं, इसीलिए वैदिक संस्कार में वर्णाश्रम धर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हम भक्ति में लग सकते हैं, और अलग अलग संस्कार होते हैं, जब से माँ के गर्भ में बच्चे के आने के पहले जिस दिन से कंसेप्शन होता है उस दिन से लेके बच्चे की मृत्यु तक संस्कार अलग अलग संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, फिर अलग अलग संस्कार उसके जीवन में होते हैं। तो जो इन संस्कारों का आश्रय लेते हैं और भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं वो धीरे धीरे भगवान को पाने की इच्छा करने लगते हैं और फिर शुद्ध भक्त की भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये दूसरा स्टेज है, पहला स्टेज शुद्ध भक्ति एडवांस डिवोशन, दूसरा स्टेज साधना भक्ति मतलब भक्ति के नियमों का पालन, तीसरा स्टेज भगवान बता रहे हैं कि अगर अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, भक्तियों के नियमों का भी अभ्यास नहीं होता है तुमसे, अगर इस तरह से है कि उसके नियमों का भी अभ्यास नहीं हो पाते हो तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो, मतलब कुछ सेवा करो जिससे कि, और उस सेवा को मुझे अर्पित करो, जैसे कोई भी कर्म हो सकता है। इसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है, यदि कोई भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्व अवस्था प्राप्त प्रदान की जा सकती है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, एक तो कृष्ण भक्ति का जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनके लिए हमें सहानुभूति होना चाहिए, उनकी मदद हो सकती है, उनके लिए जो भी मदद है, फाइनेंस की आवश्यकता है और भूमि की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है, लेबर की आवश्यकता है, तो इस तरीके से हम उनको मदद कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अगर हम कृष्ण भक्ति के प्रचार में किसी तरह भी मदद कर सकते हैं, चाहे अपने पैसा दे के, शरीर से सेवा करके, और लोग उनको भूमि की आवश्यकता है भूमि दिला के, उनको कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो उसमें अगर हम करेंगे तो भगवान के लिए किया हुआ कर्म होगा और उस भगवान के लिए किए हुए कर्म से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उससे हम और ऊंची अवस्था में आएंगे, फिर एक समय आएगा जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और फिर शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। जैसे किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए पूंजी, श्रम तथा विस्तार करने के लिए संगठन चाहिए, उसी तरह कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। केवल ये अंतर है कि भौतिकवाद में हम अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं और कृष्ण भक्ति में हम कृष्ण की तुष्टि के लिए सारे कार्य करते हैं। तो अगर किसी के पास बहुत धन है तो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए मंदिर बनवा सकते हैं, कार्यालय बनवा सकते हैं, प्रचार के लिए मदद कर सकते हैं, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रचार केंद्र बनवा सकते हैं, बुक्स को प्रकाशित करने में मदद कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा दे सकते हैं, बुक प्रिंटिंग के लिए पैसा दे सकते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा के लिए पैसा दे सकते हैं। अगर किसी के पास धन है तो भगवान को इस तरह से भगवान के मंदिर में दे सकते हैं, और कोई भी कर्म करते हैं उसके फल को हम भगवान को कुछ ना कुछ प्रतिशत भगवान को दे सकते हैं। इस तरह से करने से धीरे धीरे व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा और फिर उसको शुद्धता प्राप्त हो सकती है। अभी भगवान बता रहे हैं कि अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करना है, कम से कम, ठीक है आप कृष्ण भक्ति के लिए भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कर्म के फलों को त्याग करके कर्म करने का काम करो। कर्म के फलों को त्याग करने का मतलब, अगर कोई भगवान के लिए नहीं भी दे पा रहा है तो सबसे नीचे का स्टेज है, जैसे तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति दिखा पाने में अक्षम रहे। हो सकता है कृष्ण भक्ति, जैसे पारिवारिक सिचुएशन बहुत खराब है या कोई ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर वो कृष्ण भक्ति में भी कोई कर्म नहीं कर पाता है तो अपनी सहानुभूति रख सकता है, या तो पारिवारिक सदस्य बहुत विरोध कर रहे हैं या दूसरी कठिनाइयां हों, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो कम से कम उसको ये करना चाहिए कि अपने कर्म के फलों को त्याग तो करे, कुछ ना कुछ वैदिक कर्मों में उसको लगाए। ऐसे यज्ञ और पुण्य कार्य हैं जिससे पिछले कार्यों के फलों को लगाया जा सकता है और धीरे धीरे फिर व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर आता है। तो ये चार स्टेजेज हुई, सबसे पहले शुद्ध भक्ति, अगर वो नहीं हो पा रहा तो साधना भक्ति, अगर साधना भक्ति नहीं हो पा रहा है तो कृष्ण के लिए सेवा, कर्म करो, और कर्म करो मतलब शरीर से, पूंजी से और संगठन से, लेबर से, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कर्मों का त्याग करके कहीं वैदिक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए पैसा लगाओ। तो सबसे नीचे का स्टेज है ये। इस तरीके से हम देखेंगे तो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से एंगेज हो सकता है, क्योंकि कर्म के फलों का त्याग करने से भी व्यक्ति को कम से कम ऐसा लगेगा कि मैं इस कर्म के फलों का भोक्ता नहीं हूँ, तो कम से कम वो उस भोक्ता की स्थिति से ऊपर आएगा और फिर कभी सिचुएशन अच्छी होगी तो वो कृष्ण भक्ति के लिए भी मदद कर सकता है। इसके बाद आगे बता रहे हैं कि यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर पाते हो, भक्ति योग के विधानों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान ज्ञान के अनुशीलन मतलब शास्त्रों को पढ़ के समझने के प्रयास करो, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करो। ज्ञान प्राप्त होगा तो भक्ति के नियमों का पालन होगा। और ज्ञान से ज़्यादा अच्छा ध्यान है, ध्यान से अच्छा है कर्म का त्याग। कर्मों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मों का अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो कर्मों का फल हमें ही मिलता है। उस फल को हम भोगते रहते हैं और अलग अलग शरीर में हम उस फल को लगातार देखते रहते हैं, उससे हमें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कर्मों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। कर्मों का त्याग करने से हमें मास्टर से जो है हमारी मास्टर बनने की इच्छा वो खत्म हो जाती है। यदि कोई ध्यान नहीं कर पाता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों के लिए कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो सबसे ऊंचे पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास, भगवान तक पहुंचने की दो विधियां यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो है क्रमिक विकास, दूसरी है डायरेक्ट। तो कृष्ण भक्ति जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट भगवान के पास जाना। और जो उसके अलावा जो इनडायरेक्ट मतलब धीमे धीमे, एक को बोल सकते हैं एलिवेटर लिफ्ट और दूसरे को बोल सकते हैं सीढ़ी। तो क्रमिक विकास जो है वो सीढ़ी जैसा है, प्रत्यक्ष जो है भक्ति जैसा है, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति के अलावा जो क्रमिक विकास है उसमें है सबसे पहले फल का त्याग करना। फल का त्याग करके मनुष्य को ज्ञान की अवस्था में आना। ज्ञान मतलब मैं मास्टर नहीं हूँ, ये ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान के प्राप्त करने के बाद फिर ध्यान की अवस्था में आना, और फिर परमात्मा के बोध को प्राप्त करना समाधि की अवस्था में, और फिर भगवान को प्राप्त करना। तो मनुष्य चाहे तो इस धीमे रास्ते से जा सकता है, कर्मों को त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करके फिर ध्यान लगा के फिर परमात्मा को प्राप्त करके भगवान के पास आ सकता है। ये एक धीमा रास्ता है, नहीं तो प्रत्यक्ष रास्ता है, भगवत की भगवान की भक्ति में लग जाए। तो भगवान ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रास्ता नहीं बताया, भगवान ने बताया कि अर्जुन तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो भगवान उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें अप्रत्यक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है, तुम डायरेक्टली प्रत्यक्ष विधि प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किस प्रकार से हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसके तात्पर्यों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए घर में। अभी लॉकडाउन के समय आसानी से पढ़ सकते हैं इसके तात्पर्य। 12वां अध्याय, यद्यपि छोटा अध्याय है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं। इसके बाद अगला सेक्शन जो आता है, लास्ट सेक्शन है ये, 13 से लेकर 20 तक। तो इसमें भगवान ऐसे भक्तों के गुण बता रहे हैं जो कि भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हम सभी भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमें प्रेम करें, हम भगवान को प्रेम करें। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान को कौन कौन से गुण बहुत अच्छे लगते हैं, और भगवान ने हमें कृपा करने के लिए वो गुण इस अध्याय में इन श्लोकों में बताए हैं कि कौन कौन से गुण भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो सबसे पहला गुण भगवान बताते हैं अद्वेष्टा। अद्वेष्टा मतलब हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या मतलब किसी की उन्नति देख के हमें खराब नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसको ईर्ष्या बोला जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जीवों में किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए, सभी से मित्रता होनी चाहिए, सभी के लिए करुणा होनी चाहिए। करुणा का मतलब होता है कि अगर कोई हम देखते हैं कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई जीव परेशानी में है, तो उसकी मदद की इच्छा, उसको करुणा बोला जाता है। उसके बाद अगली क्वालिटी भगवान बता रहे हैं, देखो एक क्वालिटी भगवान ने बताया अद्वेष्टा मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरा क्वालिटी भगवान बता रहे हैं सभी से मित्रता होनी चाहिए, और सभी के प्रति करुणा होनी चाहिए। करुणा मतलब कंपैशन, इंग्लिश में इसको कंपैशन बोला जाता है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं निर्ममो निरहंकार। निर्ममो मतलब ममता से रहित, ममता मतलब स्वामित्व की भावना, खुद को मालिक समझना, इस भावना से मुक्त होना चाहिए। निरहंकार, स्वयं के ऊपर अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अहंकार मतलब मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं हीरो हूँ, मैं जो करता हूँ परफेक्ट होता है, इस तरीके की जो भावना है ये अहंकार घमंड की भावना कहलाती है, इससे रहित होना चाहिए। सुख और दुख में समान होना चाहिए, ये क्वालिटी भगवान कई बार बताते हैं अलग 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 चैप्टर्स में, भगवान इस क्वालिटी को कई बार बताते हैं। सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट हमेशा रहना चाहिए। संतुष्ट हम तभी रह सकते हैं जब हमारी इच्छाएं कम हों और हम कृतज्ञ हों जो हमें मिलता है। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं आप ऑफिस गए या कहीं बाहर गए और आप रात में बहुत लेट अपने घर लौट रहे हैं, 10 बजे 11 बज गया रात में, तो आपने किसी से बोला नहीं था कि आपके लिए प्रसाद बचा के रखने के लिए, और आप जब आए तो आपको कोई आशा नहीं थी कि प्रसाद मिलेगा, और उसी समय आपको पता चला कि आपके मित्र ने, आपके भाई ने आपके लिए खिचड़ी निकाल के रखा हुआ है। तो उस समय आप इतने भूखे होंगे कि खिचड़ी आपको बहुत अच्छा लगेगा और भाई से एकदम खुश हो जाएंगे कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। तो ये एक अवस्था है। अगर दूसरी अवस्था हम देखें, ऑफिस से हम बोल के आए हैं, फ़ोन पे हमने बोला था कि मेरे लिए फीस्ट बना के रखना या पूरी सब्जी दाल चावल ये सब मेरे लिए बना के रखना, और जब हम आए तो हमने देखा कि वो सब खत्म हो गया। तो अभी हम खिचड़ी केवल बचा है, वो सब खत्म हो गया, केवल खिचड़ी बचा है, तो अभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कारण क्या था? खिचड़ी पहले भी था, खिचड़ी अभी भी था, परंतु हमारे मन में पहले कृतज्ञता थी और अभी हमारे मन में गुस्सा है। तो इसका क्या कारण है कि अगर हम कभी किसी से आशा रखेंगे तो आशाएं पूरी नहीं होती हैं, और जब आशाएं पूरी नहीं होती हैं तो उससे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो सामान्यतः हमें ऐसी अवधारणा बनाना चाहिए कि किसी से कुछ आशा नहीं करें, जो मिलेगा उसको अच्छे से स्वीकार करेंगे, तो वो व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। ठीक है, आज अच्छा खाना मिल गया, कोई कल खराब मिल गया कल आज खराब मिल गया कोई बात नहीं, बाद में अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार से संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के लिए अगर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो फिर भगवान की साधना, भगवान के लिए ध्यान करने का मौका नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो भौतिक वस्तुओं में जितना कम टेंशन लेंगे उतना हम भगवान के लिए ज़्यादा अच्छे से सेवा में टाइम दे सकते हैं। इसलिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। दृढ़ निश्चय, इस प्रकार का निश्चय होना चाहिए कि हम भगवत भक्ति में श्योरली आगे बढ़ेंगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली भगवत प्रेम ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपनी शक्ति से प्राप्त कर सकें, भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान अरेंज करते हैं। अपनी तरफ से हम केवल यही कर सकते हैं कि हम निश्चय रूप से, निश्चय करके हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। जैसे भिखारी कितने जोर से भीख मांगे, उसको भीख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भीख देने वाले पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट है और दृढ़ निश्चय से भक्ति में लगता है और अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करता है, ऐसा भक्त तो मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान यहाँ पे बताते हैं, आगे भगवान बता रहे हैं, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चयः। ऐसा व्यक्ति जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, मतलब जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी को भी विचलित नहीं करता है, और सुख दुख में हर्ष अमर्ष, हर्ष और सुख दुख, हर्ष सुख दुख मतलब हर्ष अमर्ष, हर्ष अमर्ष और भय उद्वेग इन सब से मुक्त होता है, कभी भयभीत नहीं होता है। भयभीत हमने कल सुना था, जगह हम सोचते हैं अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो हम भयभीत होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये संसार में कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ। परंतु अगर हम भगवान को अपने पिता जैसा स्वीकार करते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान ही मेरे पिता हैं और भगवान मुझे देख भी रहे हैं, जो भी है वो भगवान मेरे लिए अरेंज करेंगे, इस तरह से हम समझते हैं। तो फिर उस केस में कभी भी हमें भय नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हमारे भाग्य में होगा वो भगवान हमें देने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो भक्त है वो हमेशा कूल माइंड के लिए, कूल माइंड में रहता है और उद्विग्न नहीं होता है, सभी सभी उपद्रवों में भी वो समान रहता है। इसके बाद आता है, अनपेक्ष सुचेव दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। इन सारे श्लोकों के लास्ट में भगवान यही बता रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त जो संसार में किसी चीज़ पे आश्रित नहीं, केवल मेरे ऊपर आश्रित है, जो उदासीन है। उदासीन मतलब संसार में ज़्यादा दिमाग उसका ज़्यादा, वो अपने आप को आसक्त नहीं रखता है, और सुचि बहुत शुद्ध रहता है, हमेशा क्लीन रहता है, उसका मन बुद्धि उसका शरीर हमेशा साफ रहता है। दक्ष, दक्ष मतलब हर कार्य करने में निपुण है। भगवान, भगवान के जो भक्त होते हैं हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति से उनके अंदर ऐसा गुण आता है कि वो हर जो भी कार्य करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। और सर्वारम्भ परित्यागी, भौतिक भोग के जो प्रयत्न है उसको वो त्याग देते हैं, भगवान की भक्ति में जो प्रयत्न है उसको बहुत अच्छे से करते हैं, परंतु भौतिक भोगों को भक्त त्याग देते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में बहुत विश्वास रखते हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण चिंतित नहीं होते हैं और शरीर से भी ज़्यादा आसक्त नहीं होते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करते जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। भगवान के मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं, परंतु तो अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, अपने भोग के लिए। ऐसे लोग भगवान को पसंद होते हैं। इसके बाद आगे भगवान बता रहे हैं, जो ना तो हर्षित होता है ना शोक करता है। इसमें कुछ कुछ गुण हम देखेंगे कॉमन आ रहे हैं, बार बार भगवान बता रहे हैं। उसका ये मतलब है कि भगवान उन गुणों को कितना महत्व समझ देते हैं। जैसे ये गुण है सुख दुख में समान रहना, ना तो ज़्यादा हर्ष होना ना ज़्यादा शोक करना। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इसको क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये गुण द्वैतता का प्रतीक है, और हमें अद्वैत, अद्वैत शब्द का मतलब हमें आत्मा के स्तर पे आना है, जिससे कि शरीर में जो चीज़ हो सुख दुख उसमें हम ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। तो इसलिए भगवान इस कई श्लोकों में इसको बता रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। जो ना तो हर्षित होता है ना शोक करता है, ना पछताता है ना ईर्ष्या करता है, और शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसके बाद अगले श्लोकों में भगवान एक बता रहे हैं, मित्र और शत्रु दोनों के लिए समान होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, पांडवों के लिए भी वो उसी तरह से सम्मान करते थे, और दुर्योधन को भी वो शत्रु नहीं मानते थे। तो मित्र और शत्रुओं का समान व्यवहार करते हैं, मान अपमान का समान समझते हैं। मान अपमान की स्टोरी आपने सुनी होगी। एक बार बुद्ध को एक दिन एक व्यक्ति ने बहुत आके उसके मुंह पे थूक दिया, और फिर बहुत देर तक उनको चिल्लाते रहे, और बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने बोला, आपने अगर बोल दिया हो तो मैं चला जाता हूँ, ऐसा बोल के चले गए। फिर अगले दिन उसी व्यक्ति को जब लगा कि ये तो बहुत बड़े साधु हैं, मैंने इतना चिल्लाया तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो अगले दिन जाके वो बुद्ध की बहुत प्रशंसा की बहुत देर तक। और बुद्ध ने प्रशंसा सुनने के बाद भी बोला, ठीक है आपका हो गया हो तो मैं चला जाता हूँ, ऐसा बोल के बुद्ध चले गए। तो मान हो चाहे अपमान हो, दोनों को सहन करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार अपमान सहन करना आसान होता है, मान सहन करना कठिन होता है, क्योंकि मान सहन करके हम फूल जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं कि आज इसको मेरी ग्लोरीज पता चली, आज इसको पता चला कि मैं कितना महान हूँ, पहले तो इसको नहीं पता था। तो ये बहुत डेंजरस है, मान अपमान से प्रभावित होना बहुत डेंजरस है। हमें दोनों के लिए उदासीन रहना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति में दोनों दोनों इतने उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि मान अपमान जो है वो शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं मिलता है। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शीत गर्मी सुख दुख यश और अपयश में समान भाव रखता है। और एक हमने पहले भी डिस्कस किया था एक दो श्लोक पहले, कि दूषित संगति से मुक्त रहता है, संग विवर्जिता, संसार के जो गलत लोगों का संग है वो संग भक्त प्राप्त नहीं करता है, और हमेशा संतुष्ट रहता है। अनिकेत, अनिकेत का मतलब होता है कि उसका आकर्षण इस संसार की वस्तुओं से नहीं होता है। अनिकेत का, अनिकेत शब्द वास्तविकता में संन्यासी के लिए उपयोग किया जाता है। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर बार नहीं होता है, बिना घर बार के, मतलब इस संसार में उसका कोई आश्रय नहीं है, केवल भगवान ही उसके आश्रय है, ऐसे व्यक्ति को अनिकेत बोला जाता है। वो ज़्यादा घर बार की परिभाषा परवाह नहीं करता। जैसे भगवान शिव को अनिकेत बोला जाता है, क्योंकि उनको उनकी पत्नी जो है वो संसार की सबसे धनी है, पार्वती देवी, संसार की सारी दौलत उनके पास है, पूरा भौतिक संसार वो चलाती हैं, परंतु शंकर जी के पास रहने का घर भी नहीं है, वो इतने बड़े साधु हैं। एक बार उन्होंने घर बनवाया, पार्वती ने बार बार उनसे जिद करके बोला कि घर बनवाओ, तो शंकर जी ने घर बनवाया। फिर घर बनवाने के बाद जब यज्ञ किया, तो यज्ञ के बाद जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बात आई, तो शंकर जी के पास कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने उसी घर की दक्षिणा दे दी। वो घर ब्राह्मणों को दे के फिर से वही कैलाश पर्वत में पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो ये अनिकेत कहलाते हैं, उनको संसार में कोई चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं है, केवल भगवान की भक्ति से लगाव होता है। तो उनको निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वो भगवत भक्ति के ज्ञान में लगे रहते हैं, ज्ञान में दृढ़ होते हैं, और भक्ति में संलग्न रहते हैं। ऐसे भक्त कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, वो प्रजल्प भी नहीं करेंगे। जब भी वो बोलेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, भगवान से संबंधित बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। तो मनुष्य को आवश्यकता पे बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सबसे अनिवार्य वाणी भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। आवास की सुविधा की भी चिंता नहीं करता है, किसी भी पेड़ के नीचे रह सकता है, उच्च महल में भी रह सकता है, किसी से आसक्त नहीं होता है। यहाँ पे भक्तों के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटेशन किया है भगवान ने कुछ जगह पे, कि लेकिन यह इस बात को बल देने के लिए किया है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करना चाहिए। ये सारे गुण कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। तो इन गुणों के लिए अलग से बाहर प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं, ये तो धर्मामृतम विदम यथोक्तम परियुपासते श्रद्धाना परम भक्तास्ते तेव मे प्रिया। जो इस भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अंत में भगवान बता रहे हैं कि जो भी इस भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं, लगातार इस भक्ति में लगे रहते हैं और मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो भक्ति में बहुत जरूरी है कि हम संसार की चीज़ों से आकर्षित नहीं हों। हमें अभी हमारे अंदर हो सकता है इतनी शुद्धता नहीं हो, परंतु हमें कम से कम मन में एक कन्विंस होना चाहिए कि भगवान ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसके बिना मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। हो सकता है अभी हम शुद्ध भक्त नहीं हों, परंतु हमारा गोल इस तरह से हमें रखना चाहिए और भक्ति के रास्ते पर लगे रहना चाहिए, भले ही कठिनाई आए, परिवार से कठिनाई आए, स्वास्थ्य से कठिनाई आए, किसी भी तरह से कठिनाई आए, परंतु भक्ति के इस पथ पर लगे रहना चाहिए और भगवान को अपना चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। और हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए कि अगर मैं प्रयास करूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। ऐसा अगर कोई भक्त करता है तो भगवान उसको बता रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस अध्याय में दूसरे श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों को बताया है। ऐसी विधियां भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान ने इस पूरे अध्याय में बताया है कि मेरे पास कैसे पहुंचा जा सकता है। अर्जुन ने प्रश्न उठाया था, सबसे शुरू में हमने देखा था अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म में लगे हैं वो श्रेष्ठ हैं कि साकार भगवान की पूजा में जो लगे हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने बहुत क्लियर उत्तर दिया कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और इस अध्याय में यह भी बताया है कि भगवान के भक्तों के संग से भक्ति में आसक्ति आ सकती है, आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, और जिससे वो भक्त प्रामाणिक गुरु स्वीकार करता है और भक्ति के नियमों का पालन करता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, अपने शरीर को भगवान को समर्पित करता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था, भगवान हमें बता रहे थे कि अगर कोई एडवांस स्तर पे नहीं है तो भक्ति योग के नियमों को पालन कर सकता है, भक्ति योग के नियम पालन करने में भी समर्थ नहीं है तो कृष्ण के लिए कर्म कर सकता है। कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पा रहा है, कर्म का इन द सेंस जो भी उसका शरीर से पूंजी से जो भी कर्म कर सकता है वो कर सकता है, अगर वो भी नहीं है तो कम से कम कर्म के फलों का त्याग कर सकता है। कर्म के फलों का त्याग ज्ञान प्राप्त उसमें श्लोक में आता है कि कर्म के फलों का त्याग कर सकता है, कर्म के फलों का त्याग करके उसको ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त करके वो ध्यान की अवस्था में जाएगा, ध्यान के बाद परमात्मा को प्राप्त करेगा, फिर भगवान को प्राप्त करेगा। ये लंबी प्रोसेस है, भगवान डायरेक्ट प्रोसेस बताते हैं, सीधे भगवान की सेवा में लग जाना, भगवान की भक्ति में लग जाना, वो डायरेक्ट प्रोसेस है। तो हमने वो देखा सबसे पहले निराकार साकार के बीच में, और फिर ये भगवान को भगवान की सेवा में किस प्रकार से अलग अलग तरीके से एंगेज हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट के 8 श्लोकों में हमने देखा भगवान ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं, ऐसे गुणों के बारे में बता रहे हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं। जिन भक्तों के अंदर ये गुण होते हैं भगवान उन भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। और लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे इस परम भक्ति में लगे रहते हैं और श्रद्धा के साथ कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा सुलभता प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान हमें सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। यद्यपि केवल 20 श्लोक ही हैं इस अध्याय में, परंतु तब भी ये मैंने जब 9वां अध्याय हमने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि 9वां अध्याय और 12वां अध्याय भगवद्गीता के 2 सबसे इंपॉर्टेंट अध्यायों में से आते हैं। और साथ ही साथ इस अध्याय के साथ हमारा भक्ति योग का जो सेक्शन है बीच के 6 अध्याय वो कंप्लीट होते हैं। कल से हम एंटर करेंगे ज्ञान योग अध्याय 13 से लेके 18 तक, और ज्ञान योग में बहुत डिटेल्ड फिलोसॉफिकल नॉलेज है, तो अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक। तो कल हम फिर से मिलेंगे इसी समय पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद्भगवद्गीता यथा रूप की जय।